55 गर्भ यूनिट है, इसका अकाउंट किया जाए, हिसाब किताब किया जाए। और जब कुछ उनका पेट बढ़ता है, इसका आनंद और परिवर्तनों का जो उन्होंने खिलाया पिलाया है, तो उसका दोगुण दे दिया जाए, क्योंकि सारदा के लिए भी कोई जरूरत नहीं, दोगुण दिया जाए। तात्पर्य क्या है? कहते हैं गोपराज को, गोपराज मैंने नंद बाबा को है, अरे उनके घर में क्या है, केवल तो गायों का छाक है, दूध है, बस यही तो, इसका दाम कितना होगा? और केवल 11 वर्ष तक, और वो भी हिसाब काट करके, कौन सा हिसाब? हाँ, जब से भैया कराया उसका भी तो कोई महीना या वेतन है, तो इसको निकाल करके क्या बचेगा? कौन कौन ही हम विचार कराएंगे गर्व से, वो महान जो किसी है, एक पैसे की दूर नहीं होगी, हमारे पति का एक पैसा भी नहीं जाएगा दूसरे शरीर में, वो हिसाब करके सब निकाल देंगे। और गुरु का कितना खर्च, गाय का दर्द खर्च, सही बह रही है वहाँ नंद गोकुल में, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मैं स्वयं सफर करके कह रही हूँ, हम अपने पति से जो कुछ हिसाब निकलेगा उसका भूलना मैं करें और जरूर नंद को दिखा। इसमें एक बात आएगी, कृष्ण और बलदेवी 11 वर्ष तक रहे इसमें लिखा है, ये जन्म से लेकर के, जन्म से लेकर के 10 वर्ष कितने, 8 महीने वहां रहे, तो 4-5 वर्ष तो वो, या 3 वर्ष तक तो वो मैया का कुछ किया, वो निशान नहीं आना चाहिए, देखो नहीं आना चाहिए। और उसके बाद में बच्चा क्या है, 11 वर्ष में से 3 जगह चला जाए तो 9 वर्ष, तो 9 वर्ष में वो 8 वर्ष, और 8 वर्ष में मान लें कि रोज 1-1 किलो 2-2 किलो दिए हैं, तो महीने में कितना लेंगे, और उसमें गुरस का काम कितना होगा, बहुत सस्ता नहीं के बराबर। ये सुनते हैं कि नंदगांव में एक खास कुंड है, उसमें दही मथने के बाद में आज को कोई पीने वाला नहीं, तो मक्खन ही खाना नहीं, मक्खन ही चला है खाएगा, वो छाछ का कुंड वो फेंक देते थे और साथ जमा रहता, गाय बैल भी मानते नहीं पीते थे, इतना खास और इसलिए कोई भी मूल्य नहीं। दूसरी बात, कोई कोई कहते हैं कि कृष्ण युवावस्था के प्रारंभ तक अर्थात 15 वर्ष की अवस्था तक रहे, तो इसमें भी सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कोई इसमें असामंजस्य की बात नहीं है, क्यों? भागवत में तो देखा जाता है एकादश पर क्यों लिखा गया, किशोर काल तक मार है, तो किशोर काल कितने मर की होती है, 15 वर्ष तक उसकी स्थिति है किशोर, उसमें भी एक चढ़ता हुआ किशोर है, 9 वर्ष किशोर, वैसंगी का है, एक मध्य वैसंगी का और एक व्यक्त है, तो उस समय व्यक्त 15 वर्ष का किशोर माना जाता है, कृष्ण के लिए गोपों के लिए, और किशोरियों के लिए 12-13 वर्ष था, तो उतने दिन तक निवास किया है, इसका सामंजस्य क्या होगा, उसके लिए कह रहे हैं ज इस समय अक्रूर राम और कृष्ण को ले जाने के लिए गोकुल में आए, उस समय उन्होंने कृष्ण को किशोर रूप में दर्शन किया था। किशोर रूप में दिया दर्शन दिया और जब कृष्ण कंस को कंस के चारों मुक्ति के पहलवानों से जबकि लड़ने के लिए गए तो मथुरा की किशोरिया ने उसे देकर के क्या कहा था, किशोर मुक्ति कामदेव रक्षा, कामदेव की किशोर मुक्ति नहीं, गोपीनाथ मूर्तिमान मूर्तिमान। इसे उस समय काफी किशोर बदल किया गया। वैसे तो कृष्ण जब तक रहते हैं इस जगत में धरा किशोर मुक्ति रहते हैं, कभी भी वो युवावस्था में नहीं होते, उनके मुँहें और दाढ़ियाँ नहीं होती, कभी नहीं होता। ये भगवत्ता का एक विशेष लक्षण है, सब भगवान के किंतु कृष्ण के लिए विशेष कर। रामचंद्र जी को भी ऐसा देखा जाता है कि 11,000 वर्ष की आयु में भी वृद्ध नहीं हुए, वृद्ध नहीं, एकदम युवा जैसे लग रहे हैं। और कृष्ण तो 100 वर्ष की उम्र में भी एकदम युवक किशोर ही देखते हैं। उस समय कल्पोर का लेवल का वर्णन भी श्रीमद्भागवत में आता है और केवल लोगों ने अभी पदार्पण नहीं किया जिस समय की कृष्ण ने कंस के अनुचरों को मारा और कल्पोर होने से 11 वर्ष ही समझ में आता है, किंतु कृष्ण 11 वर्ष की उम्र में ही ऐसे मक्खन और दूध मलाई खा करके ऐसे हो जाते हैं मानो 15-20 वर्ष के। इसलिए रामकृष्ण कंस वध के पश्चात जब यज्ञों को भी स्थान दिया और रंगभूमि में वसुदेव देवकी को प्रणाम किया और बोले हम तुम्हारे पुत्र हैं, वो ऐश्वर्य को देख करके ये जितना ये बलवान है स्वयं भगवान है, इसलिए पुत्र भाव समाप्त हो गया और आए ये भगवान जी। तो वो कहते हैं हम लोग आपके पुत्र हैं, हमारे बाल्य भवन और किशोर उम्र की लीलाओं को आपने अनुभव नहीं किया, कुछ उपभोग नहीं किया आपने, उस समय समय जिंदा बनने था पुत्र होने पर भी मैं पुत्र था, किंतु आप लोगों ने वो भाव भवन कैसो अवस्था की लीलाओं से आप वंचित रहे। क्योंकि मथुरा में आते ही कृष्ण ने परम ऐश्वर्य प्रकट किया, अब वहां मथुरा नहीं हो गए, जरासंध से पिछली बार नहीं किया उन्होंने, इसलिए ऐश्वर्य भाव वहां पर कभी कभी संचक्र लगा करना भी था। यहां भी वैसा ही बाल रहते हैं जब कृष्ण सभी किशोर उम्र उसके लक्षण का बदलाए, उसके उदाहरण दिए गए हैं उज्जवल नहीं मिली है किंतु वह साधारण आदमी सुनने के योग्य हैं। इसलिए कृष्ण का नित्य किशोर विकास करने पर भी वो नित्य किशोर अवस्था में ही रहते हैं, अथवा कैशोर का पंचदर वंश भगवान गोकुल से मथुरा को उठाए, ऐसा भी किसी किसी ने कहा है, ये भी ठीक है सुना कर देखना, क्योंकि पंचदर वर्ष तक किशोर की एक अवस्था है और यही श्रृंगार का समय है। इसके बाद मथुरा आने पर श्रृंगार श्रृंगार समाप्त हो जाता है, वो नहीं रहता है। इसलिए उसने जो कहा परमावती ने वो ठीक ही था, वो न्याय संग्रह पटल तो धोनी थी। You can have it. Not understand. ऐसे जिन्हें अपनी मैया से कहा, हे माता जी, कृष्ण ने पद्मावती की बात शुरू करते ही उस पर कोई ध्यान नहीं, मन सुनाई नहीं, इसीलिए ब्रजवासियों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? उद्धव जी से पूछा, इस प्रकार से पूछा, मानवों को जानते हुए अज्ञानी है, कुछ नहीं जानते, इसका भी कोई कारण विशेष है। वो कारण ये है, मैं तो ब्रज में जाना चाहता हूँ, किंतु यहाँ माता जी हैं और पिताजी और मथुरा के लोग हैं, वो दुखी होंगे, इसलिए उद्धव से भी कह देगा कि ब्रज में आपका जाना ही उचित है, उसके बिना वो मर जाएंगे, तब फिर उनसे कोई नहीं लो। ऐसी बात से कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, तुम तो बोलो भो विश्वकर सतत अपना अभिप्राय भगवान, आप ब्रज में गए काफी दिन वहां रहे, ब्रजवासियों से खुले मिले, नंद बाबा से गुरुओं से, और उसके बाद में उनकी भावनाओं को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और आप उन्हीं सब का विचार करके हमें बतलाइए, मैं उन्हें क्या दूं, कैसे वो प्रसन्न हो, क्योंकि देवकी जी ने भी ऐसा कहा था, जब तुम उनको जोर देना है तो दे दो। इसलिए पूछा, जो देवकी की मैया का भी आप अभिप्राय है, तो मैं अपने मन से करूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उद्धव भी बदला है, और तब भी मैं कहूंगा जो उद्धव तो हमारा मंत्री और गुरु है, इसने जैसा कहा पालन किया, दोष हमारे ऊपर नहीं आए, वो उद्धव कुछ भी आएगा। इसे सुन करके उद्धव जी हृदय में बड़े दुखित थे, बहुत दुखी थे कृष्ण की बात सुनकर, और क्षण भर तक लंबे दीर्घ निश्वास को छोड़कर और सुन बड़े अनुसार प्रकार से दुख करते हुए, क्यों? इसलिए उद्धव प्रेम में दिवस ब्रज में गए, गोपियों की दशा देखी, गायों की दशा देखी, सारे ब्रज को देखा, कीर्तन सुना, और बच्चे गायें हैं कि मर गई, गोपियां भी कुछ हैं कि नहीं, जब से लौटे, इसलिए वो सोच रहे थे कि यदि कृष्ण, हमने भी प्रतिज्ञा की थी बलिदान की, कृष्ण को लेकर नहीं आऊंगा, और जब यहाँ आया कृष्ण दुखी तो हुए किंतु गए, और फिर वही बातें हमसे ये पूछ रहे हैं, मतलब क्या है? भगवान के विषय को जानते हैं, कृष्ण के विषय को जानते हैं कि ब्रजवासियों का क्या है, वो क्या चाहते हैं, राज्य चाहते हैं या ब्रजवासी लोग चाहते हैं, नंद बाबा इत्यादि राज्य चाहते हैं, नहीं, वो क्या चाहते हैं, किसी प्रकार से हमारा बेटा ब्रज में लौट, किसी प्रकार से हमारे प्राण बल्लभ कृष्ण लौट सकते, इसका अतिरिक्त और कुछ भी वो लोग नहीं चाहते हैं, कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु फिर भी उद्धव जी सुनाने, और उद्धव जी इसको समझ करके देखो तो कृष्ण कैसे चतुराई से बातें करते हैं, है भीतर से नहीं जानते हैं कि मेरे दया में मेरे गए बिना उनको शांत करना नहीं होगी, किसी को भी नहीं शांत करना होगी, यहाँ तक कि गायों और बैल बच्चों को भी नहीं, वो बात नहीं अभी हमसे पूछ रहे हैं, इसलिए अज्ञान की बातें क्यों पूछ रहे हैं, जाने की इच्छा नहीं है सर, कुछ टाल पाना कर रहे हैं, इसलिए उद्धव जी गोपियों के प्रेम की हिम्मत और उनके भाव को समझ करके कुछ विचार किया कि कृष्ण क्यों बोले, उनके कहने का तात्पर्य क्या है, भौतिक समझ करके बड़े विकास करते हुए दुख प्रकाश करते हुए बोले सत्य स्वा यही बदला है। भगवान का सत्य है, चाहे वो ब्रज में हो चाहे क्या भी हो, दो बातें उनके साथ में रहती हैं। वे मथुरा का साधन रहते हैं, फिर भी उनकी अत्यंतमयी शक्तियां उसमें रहती हैं। माधुर जी के द्वारा वो अत्याधिक रहते हैं, किंतु समय समय पर वो प्रकटित हो जाते हैं। इसलिए सत्यता और निष्ठता दोनों बातें साथ में सर्वज्ञ है। कोई भी भक्त मथुरा वृंदावन में रात कर रहे हैं और कोई भी भक्त उनको पुकारता है, यदि द्रौपदी ने कर्म करते हुए पुकारा तो वो पुकारने की कार्य जाएगी नहीं जाएगी। इसलिए वह सतर्क नहीं है और सरकार में क्या है मुक्त मान है और अबोध सिद्धांत कुछ नहीं जानता हूं मन है तो सर्वज्ञ और प्रयास परम दयालु किलो में ही भगवान उनकी उन बातों को सुन करके तो बड़ी सुखी थी और सुधर मन भी वंचना मात्र है। केवल ये वंचना ज्ञान की इच्छा नहीं है इसलिए ऐसा नहीं है, मैं तो उनको तो चला जाना चाहिए। जिस दिन मैं वहां से बैठ के लौटा उनको बतलाने के लिए उनको चलना चाहिए। तात्पर्य क्या क्यों वंचना कर रहे हैं? बाकी प्रिय जन जो भेद के लोग हैं नंद बाबा होगा सखा लोग सखियां उनके प्रति कृष्ण का ऐसा व्यवहार रूप ऐसा निष्ठुर व्यवहार वो विचार करके विस्तृत हो। हमने सोचा जाए विचार के लिए द्रवित हो जाएगा फिर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ब्रजवासियों के संग से अक्रूरता नहीं हुआ और लोगों का नहीं हुआ, उनको इनका क्यों हुआ? कुछ तो ब्रज का भाव आएगा नहीं, उनके प्रति सहानुभूति आएगी क्योंकि उन्होंने बताया कि आता हो बंदे नंद्र में इसके नाम पाल मपत संता जागरूक आजाद ही आपके सामने किया जिसको ये बताया उनकी महिमा, इसलिए कुछ तो चल रहा है। इसलिए ये दृष्टि ऐसे परिवासी जो उनके लिए बड़े कारगर दिया गए हुए हैं और उनकी वो वंचना करते हैं ऐसा क्यों करते हैं उनके समझ में नहीं आया। हाँ क्योंकि कृष्ण के भीतर में जो भावना है मेरे जाने से भी उनको संतना नहीं होगी, शायद मेरी बात को नहीं समझे। इसलिए क्या कहने लगे उद्धव बात ना हरा कहे पड़ता न दिव्य वस्तु सके हवन भावता न काम कामन से अन्य सिंह किंचित अमुद्रक प्राप्य 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 दे हवंतम। वो नंद बाबा ब्रजवास और गोपियां अब से कुछ भी नहीं चाहती, कौन से भी उनका प्रेम कहता है निस्वार्थ अल्लाह विलासी का सुन इसकी ये चरण सीमा तक है गोपियां उसे बढ़कर क्या हो गए और लोगों का कुछ हो सकता है किंतु गोपियों का एकदम अल्लाह विलासी का है और निरंतर कृष्ण की सेवा में तन मन वचन से मिलती है और वहां तक पारा आ सकता है। वे कोई भी विभूति राजस्व अथवा पारिजात इत्यादि स्वर्गीय वस्तुओं की अपेक्षा नहीं करते, द्वारकावासी चाहते हैं कि कृष्ण ने पारिजात पर बुलाया तो सत्यभामा के और स्वर्ग का वो राजसभा वहां पर ले आए। उन लोगों ने इन लोगों को कहीं भी कोई सामना वासना नहीं है, आपके अतिरिक्त आपके विजय के अतिरिक्त अर्थात आपके ब्रज में ज्ञान के अतिरिक्त कोई भी लौकिक और पारलौकिक कोई भी भोग द्रव्य की उनकी कामना कदापि नहीं है। इसलिए यहां तक गोपियां कहती हैं आशीष वा आदर्श पुनर्मा अदर्शना मां मर्भतं करोति
और आपको ले करके आऊंगा, इस समय नहीं ले जा रहा।
या अलग बात है, जहाँ अमीर को जमीन से उतर उसको बेच करके आया और बदले को बेच करके आया है, मैं कैसे मुझे दिखाऊंगा। फिर तो कृष्ण के अनुरोध करने पर ले तो गए और बोले यशोदा मर जाते उसको क्यों से भेजे को ये आभूषण स्वर्ण अलंकार इत्यादि भेजा उसके लिए फिर ये तो लोग और कुछ दिनों में वो जरूर आएगा क्योंकि मेरा बेटा झूठ नहीं होता परम सत्यवादी है। इसलिए जब आएगा तो देखेगा कि तुमने भाई नहीं लिया तो बड़ा नहीं होगा इस दिन। इसलिए कृष्ण की प्रीति के लिए उन लोगों ने धारण किया है। तो बोले कि पहले क्या आपने निराकरण के बदले कृष्ण को भेज करके यहाँ पर आए? अनंत बाबा उनके घर से कभी नहीं निकले, कभी निकले नहीं। इसलिए कह रहे हैं आप मैं जो पता निवेदन कर रहा हूं आपके चरणों में आप बड़ी सावधानी से सुने, यदि आपको अच्छा लगे तो करें और ना अच्छा लगे तो मत करो, मैं उसमें कर भी क्या या फिर कोई उत्तर अच्छा के ऊपर होता है। वहां पर रुपया वो कमा रहा है रुपया कमा रहा था से और अपनी किराए में मिला से अपने घर वालों का कहते अच्छा है जब रुपया नहीं भेजता तो हमारा जीवन कैसे चलता, ये स्वार्थ है। ऐसे गोपियों का भी ये धिक्कार नहीं, जो कृष्ण ने यही समझा हमारे प्रेम का यही मूल्य है और दूसरा ये सोचा धिक्कार है हमारे प्राण उसको देकर के निकल नहीं रहे हैं, धिक्कार है धिक्कार हमारा हृदय वज्र से निर्मित है। कृष्ण को छोड़कर के ये बटन और भूषा नंद बाबा ने लाया हमें और कृष्ण ने भेजा, ये नंद बाबा को धिक्कार है, अपने को तो धिक्कार रहे हैं नंद बाबा को भी धिक्कार और कृष्ण के लिए सोच रहा है। कृष्ण ने यही समझा थी हमारे प्रेम का मूल्य हो प्रभो आपकी मैया यशोदा और उनके साथ का समस्त परिवार आपके आगमन की चिंता आयात का सुंदर आपने प्रतिज्ञा करके उनसे कहा मैं आऊंगा तो कल नहीं तो परसों भी अरुण आऊंगा, इसीलिए अपने प्राणों को धारण करेंगे आएगा और यदि हम मर रहे तो क्या होगा। उसी को चैतन्य चिंता में से बताया है कि हम तो मज्जा नहीं होती मत क्यों नहीं हो, इसलिए कि यदि वो आएगा तो देखे जाके हमें लेने आए तो भी मर जाएगा। तो वही प्रिया धन्य है जो है प्रिय और प्रियतम दोनों धन्य है, वो जो प्रिया के लिए अपने जीवन को रखता है वो प्रिय धन्य है और जो प्रियतमा अपने प्रिय के लिए जीती है वो धन्य है। चेतन में से सामने से अर्थ हो गया वही प्रेम होती है जो मर नहीं जाती पक्षी उनके लिए जीवन धारण करती है। जब राधिका जी तो ये कहती है ये मालती हमने तुम्हें लगाया मालती का पौधा अब वो पुष्प देने योग्य हो गए तो कहती है धीरा में देखो अब तो मैं मर गई, जब कृष्ण आएंगे तो ये फूलों का हार अपना जो मिला सके और कृष्ण को पहना है और कहना जो तुम्हारी चिंता करते करते जब कृष्ण धीरा कहता है तो यशोदा मैया उस समय में जब देखा अलंकार तो आप आएंगे तुम आओगे इसकी आशा को संपूर्ण अब नहीं है, अब तक आशा थी कि आएगा जरूर आएगा किंतु अब वो आशा भी नहीं पूछते और मृतक की भांति मृतपायन होकर के अंतर व्रत पर बैठे खाना पीना सोना सब कुछ यशोदा मैया ने उन गोपियों की क्या दशा हुई, यदि यशोदा मैया के लिए ये दशा है तो उनकी क्या दशा हुई। पिता अपराध नंदो बक्रम किंचित विरक्त है असक तो अत्यंत तो कवा तो का प्राण प्राण गदा नंद बाबा ब्रज में जब गए तो अपने को ब्रजवासियों का अपराध कर दिया, हमने बहुत बड़ा भारी अपराध किया ये अलंकार ने कभी क्यों गया कृष्णचार लौट के तो लाया किंतु इनको देखने से उनके प्राण निकल हो रहा है कि आप कृष्ण नहीं आएगा मैं इसको कैसे समझाऊं निकल हो गए कुछ देर तक कोई बात नहीं किए क्योंकि देश त्रय कुछ भी बात की चीज नहीं किया खर है पड़े हैं औंधे मुख को करके और उसे ही सुकार अत्यंत काकर होकर के मन प्राण के कंठ तक आ गए हैं। ऐसे परिवारियों को देखकर तो उनके प्राण की रक्षा करके तीन दिन के बाद में शपथ करके बोले हमारा बेटा जरूर आएगा परम सत्यवादी है, आप लोग चिंता मत करें, जरूर आएगा, जरूर आएगा। विश्वास उस पर किसी तरह से आया, कैसे विभिन्न प्रकार की चातुरी से उनको सांत्वना किसी प्रकार से किया। ये वृत्ति नौ ने बताया बंधु बांध आपके जो मित्र या भाई जो वसुदेव देवी इत्यादि है यादव लोग हैं, उनका कुछ मतलब सुख विधान कर मैं व्यापी हूँ, आपको हमारे ब्लड रिलेशन से युक्त आत्मी जो वजन है आत्मा से संबंधित आप लोगों को देखने जरूर जाऊंगा। नंद बाबा जी कुछ कर रहे हैं परिवासियों को और सांत्वना दे रहे हैं, तब हम बात को कह कर जब हमारा पुत्र बड़ा करते रहे, उसने ऐसा कहा है कि मैं अभिनंदन बहुत खुश हूँ इन लोगों को, तुम लोगों को सुख जानकर मैं सुखी हूँ, आपको हमारे आत्मी हैं, आपके जो मैं पैदा मानूंगा आपका पुत्र हूँ, मैं आप लोगों को दर्शन करने के लिए आऊंगा, तो वो जरूर आएगा, कभी भी नहीं भूल। संघार करना पाती है या काम पूरा करके जरूर मैं आऊँ, इसलिए आप लोगों पर विश्वास पुत्र कभी भी झूठा नहीं है, इसलिए इस तरह की नाना प्रकार की युक्तियों से समझाने लगे जाना तो प्रेम नहीं है, और ये जो अलंकार करेगा भेजा ये तो प्रेम का ही है और कुछ नहीं, जिसको हमारे पुत्र ने भेजा इसको देकर के क्यों चाहे मैं तरफ ये इसलिए जो भेजा होगा इसे आप लोग खर्च करें, और जब वो आएगा तो देखेगा तो वो प्रसन्न होगा कि हमारी भेजी हुई चीजों को इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप लोग संकित हो और उसमें आप कैसे आप वो तो कर नहीं सकता, और आप ऐसे खुद ही चित्त वाले हैं जो भी सर्व परिवासियों का भी चित्त दुखा रहे हैं, और वो मरने के प्राय में है। क्यों इतना सुन करके भी आप ब्रज में गए हैं, लौटे नहीं? और हमारे द्वारा अपने संदेह संवाद भेजा है, उसका उसका फल ये हुआ, मैं उनको संतना कर दिया कि तुम संतना से उनकी जिला सुनी और भी अधिक बढ़ गई, और उन्होंने ये ठीक किया कि अब तो इससे कभी नहीं आया, क्योंकि अब तो एकदम मरने के ज्यादा। फिर बाकी लोग दर्द का दंश हो, फिर बाकियों का कितना चीजों के प्रति अबाध प्रेम, और आपका उनके प्रति ऐसा कुछ व्यवहार मन में चिंता कर, किसी के लिए वो कह रहे हैं हमारे द्वारा आपने संदेश संवाद क्या कहलाया संवाद? अरे मैं कहा नहीं हूं, मैं तो कर रहा हूं, ध्यान लगाने के लिए सभी लोग सब जगह देते, जैसे मिट्टी का खड़ा है, मिट्टी के खड़ा में मिट्टी का कोई अभाव नहीं है, सर्वत्र मिट्टी मिट्टी है, उसी तरह से मैं मुझे ये जगह उत्पन्न हुआ और सारा लोक समाज हमको प्रदर्शन सब मैं हूं। ज्ञान दृष्टि से देखो मेरा दृष्टि तो आरोप भी नहीं है, इसलिए तुम लोग मुझसे जुड़ा रहे हो अलग नहीं, मैं तुम लोग ऊंचा करने पर भी उनसे अलग नहीं रहा, क्योंकि हम सही बने हो और आप लोग बने हो। ये ज्ञान जो है सबको किंतु गोपियों ने क्या किया, लेकिन मिथिला मंडल की गुजरी कर दी हाथ को करके और जमुना में बहा, और वो जमुना में बहते 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 गया, पहले गया इलाक प्रयाग में, जब गंगा में लिया और गंगा लेकर के क्या किया, अटल समुद्र में ज्ञान की गुजरी को बहा, ब्रज में लेकर सीधे संभव नहीं, अंतर जानी मैं सबक हूं, तुम ज्ञान के हमको दर्शन करो, समाधि लगाओ, वो भी आप भी कर गई मेरे उपदेश को सुनकर, और स्वयं उन्होंने कुरुक्षेत्र में भी यही कहा था, तो गोपियों ने उनका उत्तर क्या दिया था, जो कहने ठीक करते हैं। अरे हमारे तो सबको नहीं समझ सहज समाधि है, बचपन में आपको तो कुछ नहीं है, आपको भूल जाना चाहती है, आप भूल नहीं है, जो भी लोग समाधि से दर्शन करने की चेष्टा करते हैं नहीं कह पाते, और आप उनको भूलने की चेष्टा करने से भूल नहीं पाती, और हमको भूल की शिक्षा दे, जो संसार के लिए पड़े हुए हैं उनके लिए आपकी भक्ति कैसी है, वो संसार को उसमें निकालने के लिए जो भी समान है, हमें उसकी जरूरत नहीं, संसार के पथ को तनाव अवलंबन ये हम किसान मनस्या, आप हमारे मन में दिखो मतलब क्या, हमारा मन और मन ये है, इसलिए वृंदावन में आप बताएंगे तभी हम लोगों को तुष्टि होगी, संतुष्टि के लिए अन्य था जिस प्रकार से पृथ्वी जल से वायु आकाश ये पंचभूत करते हैं पांच वस्तुओं में करते, उसी प्रकार से मन प्राण बुद्धि इंद्रिय गुण समूह ये सब मैं ही हूं, तात्पर्य क्या तुम्हारे से हमारा प्रति योगी नहीं है, तो दर्द के साथ मुक्त लिए कर देते हैं, दिव कहा है जैसा तो योग है, क्या तुम लोग ज्ञान के लिए सीख रहे हो, क्योंकि मैं ही उपादान कारण हूं, उपादान मन मुझसे ही है, तुम लोग मन है सब लोग बने, अपने मन इत्यादि सब का सब जितने भी कार्य है मैं अनुरूप रूप में सबक नहीं हूं, मैं ही हूं सब, जैसे चराचर विश्व का कारण पंच महाभूत है, उस प्रकार मैं भी समस्त के द्वारा मैं विकास करूँ योग बनाया गोपियों का। इसलिए मुझको संदेश, इससे क्या हुआ गोपियां और कर, इसकी विरा और ज्ञान हमको दे रहे हैं। इस तरह से उद्धव जी कृष्ण को निवेदन कर रहे, आप विचार करें अभी और कल भी लग जाएंगे। कल मैं कुछ विशेष कार्य से दिल्ली जाने वाला हूँ और फिर दही से उधर में मथुरा में ये कथा हो रही है। अब तक ये कहाँ हो रही थी जनता भी, अब ये कथाएं कुछ नहीं होंगी। और फिर इसके बाद में वृंदावन में नहीं आऊँगा, हमारे परिक्रमा के आगे बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे और इन कथाओं का मर्म मर्म अच्छी तरह से समझेंगे। जो दैव लगाए और फल कथा So, I think no need of giving invitation to you. Because you want to be in Vrindavan. So, I think that you will not come. Yes. So, what should I do?
Nobody is interested in it.